Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 10, Verse Number 23. Is आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्णपादा सहकण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरिप्रियं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता माता की जय हो। अध्याय 10, जिसका शीर्षक है विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 23। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखणिरामहम् रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखणिरामहम् रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। शब्दार्थ, रुद्राणां यानी समस्त रुद्रों में शंकर शिवजी च भी अस्मि मैं हूँ। वित्त ईश यानी देवताओं का कोषाध्यक्ष, यक्ष राक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में, वसुनाम यानी वसुओं में, पावक अग्नि च यानी भी, अस्मि यानी मैं हूँ, मेरु यानी सुमेरु पर्वत, शिखरीना यानी समस्त पर्वतों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में, संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। अध्याय 10 विभूति योग। यहाँ पर भगवान हमें अपनी असीम विभूतियों में से प्राधान्यतः जो प्राधान है, जो मुख्य है, उनको बताने के लिए एग्री हुए हैं। और भगवान धीरे धीरे अपनी इन असीम विभूतियों में से जो ग्रेटेस्ट हैं, यानी प्राधान्यतः मतलब सुपरलेटिव एंड बेस्ट अमंग ऑल कैटेगरीज, यानी कि जो जो वस्तुएं, जो जो कैटेगरीज हैं जीवों की, उनमें जो सबसे ज्यादा जीव हो या कोई भी हो, वस्तु जो भी कुछ भौतिक जगत में है, उनमें सबसे ज्यादा जो बेस्टेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, जो सुपरेस्ट है, वही कृष्ण की विभूति। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उससे कम है वो कृष्ण की विभूति नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं बलम बलावतम, तो बलवानों का बल जो हूँ वो मैं हूँ। तो जो बहुत ज्यादा बलवान है उनका बल तो कृष्ण है, लेकिन जो कम बलवान है वो खुद अपना बल लेकर आए नहीं। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो सब भगवान की विभूति है, वो बस सब भगवान की शक्ति है। इसे भगवान बताए जो हाईएस्ट भी है वो भी मेरा ही एक अंश है, मेरी ही एक विभूति है। इसी को भगवान आज हमें बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे। भगवान कह रहे रुद्राणाम शंकरस्यास्मि। रुद्रों में 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। रुद्र का मतलब होता है फुल ऑफ एंगर, क्रोध से जो उत्पन्न हुए हैं। क्रोध से जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था ना, जैसे जब ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया, तब ब्रह्मा जी ने अपने अंदर से सबसे पहले चार कुमारों को उत्पन्न किया। चार कुमारों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें यह आदेश दिया कि आपको संसार का सृजन करने में मेरी सहायता करनी होगी। परंतु वह चार कुमार, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत तपस्या की थी उसके बाद उनको उनका सृजन किया था, तो फिर उनके अंदर बहुत तपस्या का गुण था, जिसके कारण उन्होंने रजोगुण में रहकर सृष्टि की उत्पत्ति करने के इस कार्य को ठुकरा दिया। बोला हम ये कार्य नहीं करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने सुना कि मेरी संतान होकर मेरे कार्य को, मेरे आदेश को मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और ये सब सृजन करेंगे और भौतिक सृष्टि में इसमें हमारा बहुत समय लगेगा तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो है वो भगवान की भक्ति करने को ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया था कि सारे कर्तव्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो उस समय जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने यह घोषित कर दिया कि हम पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध बहुत आया। और लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी जानते कि उनका उद्देश्य बिल्कुल सही है, तो फिर वो अपने इस क्रोध को व्यक्त नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि वो गलत नहीं है, तो फिर उन्होंने कोई उनको मारा नहीं, उनको कुछ क्रोध से बोला नहीं। लेकिन जब क्रोध जीव को आता है ना, तो भले ही वो अपने शब्दों को रोकते, अपने शब्द ना बोले, भले ही वो कोई उसके ऊपर कुछ मारे करे नहीं, उसको मतलब उसके शरीर को कोई कष्ट ना दे, लेकिन वो अपने नेत्रों के क्रोध को नहीं छुपा सकता। आंखों में उसकी झलक रहा होता है कि उसने उसको इस बात पे बहुत क्रोध आ रहा है ना। कभी ऐसा होता है नेत्रों से पता चल जाता है हमें कि उसको बहुत गुस्सा आया है इस बात पर। तो ब्रह्मा जी भी अपने इन नेत्रों क्रोध जो आ गया था उसको तो रोकने का बड़ा प्रयास किया, परंतु अपने नेत्रों को नहीं रोक सके और नेत्रों के अंदर क्रोध बहुत ही भयानक क्रोध आ रहा था उसको कि मेरे बेटे होकर मेरी बात नहीं मान रहे। और फिर ऐसे क्रोध से अपने नेत्रों को ऐसे गुस्से से किया तो उनके ये जो आईब्रोज है ना, उनके सेंटर में जहां पर हम तिलक लगाते वहां से एक ना अचानक से एकदम यूनिक क्रिएशन, एकदम अलग से एक जीव उत्पन्न हुआ। उनका कलर लाल था और ब्लू कलर मिक्स था, लाल और ब्लू, जिसको कहा जाता है कि लाल रंग जो है रजोगुण को प्रदर्शित करता है और ब्लू रंग जो है थोड़ा डार्क कलर एकदम वो तमोगुण को करता है, प्रदर्शन करता है। तो उनको देखकर जैसे उनको देखा और वो इतना जोर जोर से रो रहे थे और ब्रह्मा जी को बोल मतलब रो रहे थे, तो उसको साथ में वो बोल रहे थे कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मेरा नाम क्या है, मेरे आने का क्या मकसद है, इस तरह से बोल रहे थे, मुझे मेरा नाम दो, मुझे काम दो, इस और रो रहे थे साथ में जोर जोर से क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम क्योंकि पैदा होते ही रो रहे हो तो तुम्हारा नाम है रुद्र। और ब्रह्मा जी ने उनको एक साथ में बोला मारुता, आप रो नहीं आप, मैं आपको काम भी बता रहा हूँ, आपका नाम भी बता रहा हूँ। तो उनको रुद्र नाम दिया और उसके साथ साथ उनको 11 दूसरे भी नाम दिए, शंभु, शंकर, आशुतोष इत्यादि दूसरे भी 11 नाम दिए और उनको कहा कि आप ऐसा करो, कार्य आपको करना है तो आप मेरे साथ सृजन करने में सहायता करो। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोला ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ सृजन कार्य में आपकी सहायता करूंगा। तो फिर शिव जी जो है वो भी क्रिएशन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी क्रिएशन जो थी वो एकदम अद्भुत थी, एकदम अलग से थी। मतलब क्योंकि उनका स्वभाव जो था वो रजोगुण और तमोगुण, अभी जो सत्वगुण में क्रिएशन हुई हो रही थी ब्रह्मा जी से, उनके बिल्कुल विपरीत जो था वो ये शिव जी की क्रिएशन थी। तो फिर और वो क्योंकि सब क्रोधी हो रहे थे, जो भी उनसे उत्पन्न हो रहे थे वो भी क्रोधी थे और वो इसी तरह से जीव उत्पन्न कर, तभी ब्रह्मा जी ने कहा बस रुक जाओ, आप ये क्रिएशन बंद कर दो, अभी आप जाके तपस्या करो, ध्यान करो, भगवान का जाके ध्यान करो, आपकी क्रिएशन बंद करो। तो बोला फिर मुझे काम क्या, आप मुझे दूसरा काम तो दो। तो बोला अभी तो तुम्हारा काम ध्यान करने का है, लेकिन अब तुम क्योंकि तमोगुण में बहुत ज्यादा तुम्हारा विकसित है, तो फिर तुम क्या करना, जब प्रलय होगी ना तो प्रलय के टाइम पर तमोगुण की बहुत आवश्यकता होगी, तो उस समय आप पूरे संसार का विनाश करने के लिए आप कार्य करना, बाकी आप ये उत्पन्न करने के लिए कार्य मत करो। तब ब्रह्मा जी के आदेश को सुनकर शिव जी घोर तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने इतनी गहरी समाधि लगाई, इतना ध्यान किया भगवान का, इतना ध्यान किया, इतनी कठोर तपस्या की कि भागवतम में एक श्लोक लिखा वेद व्यास जी ने, नेम नमा निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतेश्वया वैष्णवानां यथा शंभु पुराणां इदं तथा। कि जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णवों में शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं और पुराणों में इदम तथा यानी श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। तो इसी बात पे हमें सोचना पड़ता है, प्रश्न आता है कि शिव जी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो अन्य वैष्णवों में नहीं है, वैष्णवों में उनके पास क्या श्रेष्ठता है वैष्णवों में। तो सबसे पहले तो वो सदैव हर समय जो है वो सदा स्वरूप संप्रातया, वो सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं, अर्थात सदैव देहात्म बुद्धि में कभी भी नहीं होते, हर समय जो है वो भगवान की भक्ति में, एक क्षण भी उनका ऐसा नहीं जाता, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हो, यहाँ तक कि जब वो प्रलय कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है कि वो अपने स्वरूप से विभिन्न होकर करे, वो उसी अपने कृष्णदास के स्वरूप में रहकर ही वो कार्य करते हैं। तो उनके अंदर कुछ गुण जो है वो साधारण दूसरे लोगों से या दूसरे जीवों से बहुत बहुत अधिक मात्रा में है। तो वैसे तो कृष्ण के असंख्य गुण हैं जिनका सारा का सारा विस्तार करना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर असंख्य करोड़ों गुण हैं जो हम नहीं समझ सकते और न ही उनको वर्णन किया जा सकता, परंतु श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के 64 मुख्य गुण 64 क्वालिटीज जो बताई भगवान की, वो ऐसा कहा कि ये सारी 64 क्वालिटीज भगवान के अंदर 100% है, यानी परिपूर्ण मात्रा में, और ये परिपूर्ण मात्रा में 64 गुण केवल और केवल कृष्ण में है, कृष्ण के अतिरिक्त किसी में भी ये गुण परिपूर्ण मात्रा में नहीं है, यहाँ तक कि लॉर्ड नारायण में भी केवल 60 गुण ही है। भगवान के गुण जो है वो 4 गुण जो है वो भगवान नारायण से भी अधिक हैं। तो कृष्ण में तो सारी की सारी 64 गुण हैं, तो जाहिर है जो नारायण के अंदर 64 हैं, सॉरी नारायण के अंदर जो 60 हैं वो तो कृष्ण के अंदर हैं ही, लेकिन जो कृष्ण के अंदर अधिक हैं वो नारायण में नहीं है। और ये भी है कि बाकी जो नारायण में नारायण भगवान में जो गुण हैं वो भी इतने 100% परिपूर्ण मात्रा में नहीं है जितने कि कृष्ण में है। परंतु जीवों में यदि वो बहुत बहुत प्रयास करे, बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अपने अंदर केवल 50 गुण ही विकसित कर सकता है, केवल 50 गुण ही विकसित कर सकता है, वो भी परिपूर्ण मात्रा में नहीं, वो भी बहुत बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का एक छोटा सा अंश है, तो वो भला कितनी क्वालिटीज को विकसित कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान का ही है, भगवान का ही अंश है, तो भगवान के अंश में भी वो सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी वो केवल 50 ही विकसित कर सकता है। परंतु शिवजी जो है उनके अंदर 55 गुण है, यानी साधारण जीवों से 5 गुण अधिक हैं। शिवजी में 50 तो वो जो जीवों के अंदर गुण वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में हैं, वो हैं, और 5 अधिक गुण को अधिक है ना क्वालिटीज हैं। परंतु शिवजी में वो 50 गुण भी जो जीवों के अंदर हैं वो एक्स्ट्रा मात्रा में हैं, अधिक मात्रा में हैं, और उसके अतिरिक्त भी 5 क्वालिटीज हैं, वो अलग से श्रील रूप गोस्वामी उनके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं सदा स्वरूप संप्रातयः सर्वज्ञ नित्य नूतनः सच्चिदानंद साम्रांग सर्व सिद्धि निषेवितः। पहला है शिवजी की पहली क्वालिटी है जो कि जीवों में नहीं होती है, वो है सदा स्वरूप संप्रातयः, वो सदैव अपने स्वरूप में होते हैं,
और सदैव हर क्षण भगवान की भक्ति में भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। दूसरा है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब परम ज्ञानी, जैसे भगवान को कहा जाता है सर्वज्ञ, जिन्हें संपूर्ण ज्ञान हो। जैसे भगवान के लिए भी कहा 1.1.1 में भागवतम में, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश चार्थेषु विज्ञः। ये सर्वज्ञ है, वह भी सब जानते हैं लेकिन, और उसके अतिरिक्त है नंबर 3 नित्य नूतन, यानी सदैव वो किशोर अवस्था में, सदैव वो भी यंग रहते हैं, मतलब कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कभी ओल्ड नहीं होते हैं, सदैव जवान रहते हैं। आप शिव जी का कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि वो बूढ़े हो गए। जैसे ब्रह्मा जी हैं वो नित्य नूतन नहीं रहते हैं, लेकिन शिव जी हैं वो सदैव नित्य नूतन रहते हैं। और नंबर 4 सच्चिद आनंद संभ्रांग, यानी उनका शरीर भी सच्चिद आनंद है। जिसका जिस प्रकार कृष्ण का शरीर सच्चिद आनंद है, उसी तरह शिव जी का भी। और 5वां है सर्व सिद्धि निवेशिवित, यानी उनके पास समस्त सिद्धियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं वो शिव जी के पास है। अब ये 5 क्वालिटी शिव जी में जीवों से अधिक पाई तो जाती हैं, परंतु ये 5 भी शिव जी के अंदर परिपूर्ण अवस्था में नहीं होती हैं। परिपूर्ण अवस्था में 100% परिपूर्ण मात्रा में ये सारी क्वालिटीज भी केवल कृष्ण के अंदर है, कि वो भी सदा अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, नित्य नूतन होते हैं किशोरावस्था में, सच्चिदानंद उनका शरीर जो है वो पूरा का पूरा सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु श्रील रूप गोस्वामी आगे कहते हैं अंशेन गिरीशादिशु, अंशेन मतलब उनका थोड़ा सा अंश जो है गिरीश, गिरीश जी कहते हैं शिव जी को, कि उनमें भी पाई जाती है मगर अंश में, यानी केवल अंश मात्र में ही है। जैसे कृष्ण 100% सच्चिदानंद है, परंतु शिव जी थोड़ा सा कम है। जैसे प्रलय के समय वो तमोगुण को धारण करते हैं और अपनी डमरू को बहुत ही भयंकर आवाज से बजाते हैं, और त्रिशूल से भयंकर तांडव नृत्य त्रिशूल के साथ वो करते हैं, और अत्यंत ही क्रोध के साथ पूरे संसार ये जो दिग्गज होते हैं ना, हाथी जो सारे ब्रह्मांड को रक्षा कर रहे होते हैं, उनको अपने त्रिशूल में, बहुत विशाल होता है उनका शरीर, उनके त्रिशूल में ये 4 दिग्गज को फंसाते हैं और इतना भयंकर तांडव नृत्य करते हैं। और इस तरह से वो जब तमोगुण को धारण करके इस भौतिक जगत का प्रलय करते हैं, भले ही वो भगवान के आदेश के अनुसार ही होता है, लेकिन क्योंकि भगवान के अंदर कभी भी कोई गुण प्रवेश नहीं कर सकता, कृष्ण जो है वो तीनों गुणों से 100% जो है वो निर्लेप हैं, परंतु क्योंकि शिव जी जो है वो गुण को स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा के लिए, इसलिए ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर शिव तत्व को बताया है ब्रह्म संहिता में। वे कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुतापयति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष, यानी कि दूध होता है ना, दही के बनने का कारण दूध ही होता है, बगैर दूध के दही नहीं बन सकते। हम ये नहीं सोचते कि दूध नहीं हो फिर भी हम दही जमा सकते हैं, नहीं, दूध के अंदर जामुन मिलाने के बाद जब हम उसका जामुन आदि कुछ खट्टा डालते हैं, उसके बाद है ना वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु। जिस प्रकार दूध खट्टा या जामुन के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से ना तो वो समान होता है और ना ही पृथक होता है। दूध के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो दही के अंदर है, लेकिन फिर भी दही को हम दूध के कार्य में यूज नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम दूध को यूज करते हैं, इस तरीके से हम दही को यूज, तो भले ही वो सेम क्वालिटीज वाला है, लेकिन फिर भी वो पृथक भी है और सेम भी है। उसी प्रकार यह शंभु तामपि सथा तथा समुपायति कार्य। उसी प्रकार क्योंकि शंभु प्रलय करने के लिए, संहार कार्य करने के लिए शंभु रूप में परिणित हो जाते भगवान और मतलब तमोगुण को स्वीकार करते हैं, इसलिए ऐसे अब देखो दूध जो है वो दही में तो परिवर्तित हो सकता है, है ना, उसको चेंज कर सकते हैं हम, दही जामुन डाल के दही बना सकते हैं, लेकिन दही को आप कुछ भी कर लो वो कभी दूध वापस नहीं बन सकता, है ना। तो इसी तरह से वो भगवान जो प्रलय करने के लिए, संहार करने के लिए शंभु का स्वरूप भी धारण कर लेते हैं, ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नमस्कार करता। तो यहाँ भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं समस्त रुद्रों में, जैसे 11 रुद्र हैं उनमें शिव जी क्योंकि प्रमुख हैं, इसलिए भगवान कहते हैं वो प्रमुख शिव जो है वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। आगे कहते हैं वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वित्तेषु यानी वित्त कहते हैं धन दौलत को, ईशम यानी जो उनकी उनके ईश्वर हो, तो देवताओं का वित्त जो है, देवताओं का जो कोषाध्यक्ष है, बहुत ज्यादा धन है, उसकी सुरक्षा करते हैं कौन, कुबेर जी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। अभी जो दूसरे देवी देवता हैं वो अपने धन की रक्षा नहीं करते, उसके लिए उन्होंने यक्षों को, यक्ष के जो कुबेर देव, कुबेर नाम के जो यक्ष हैं उनको नियोजित किया है। अब जो यक्ष होते हैं वो वास्तव में देवता नहीं होते हैं, वो एक अलग कैटेगरी होती है। देवताओं में तो भगवान ने कह दिया देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में तो देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो भगवान है, लेकिन यक्ष एक अलग कैटेगरी, एक अलग योनि है, एक भिन्न कैटेगरी है, और वो देवता नहीं है परंतु जीवों से ऊपर की योनि है। तो ये जो योनि है वो देवताओं और मनुष्यों के मध्य की है, सेंटर की है, देवताओं से थोड़ा नीचे और मनुष्यों से बहुत ऊपर। तो कुबेर जो है वो भगवान कहते हैं जो वित्तेषु रक्ष रक्षसाम यानी यक्षों राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो कुबेर जो है वो रावण का भाई है, एक तरह से आधा भाई है, जैसे ब्रह्मा जी की बहुत सारे संतान हुए, बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए, उनमें से एक पुत्र का नाम था पुलत्स्य, जो बहुत ही महान ऋषि हैं पुलत्स्य ऋषि, और फिर उनमें से उनके जो पुत्र थे उनके एक पुत्र का नाम था विश्रवा, और विश्रवा के दो पत्नियां थी, एक पत्नी देववरी से कुबेर का जन्म हुआ, एक मतलब उसकी विश्रवा की दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था देववरी, उनसे कुबेर पुत्र हुआ, और दूसरी विश्रवा की पत्नी थी उसका नाम था केशिनी, और केशिनी से उनको चार संतान उत्पन्न हुई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। तो क्योंकि उनके पिताजी एक ही थे, अलग अलग दो माताएं थी, इसलिए ये कुबेर जी जो थे वो रावण की एक तरह से भाई भी थे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि समस्त राक्षसों और यक्षों में धन का देवता जो कुबेर है वो सबसे महान है, मतलब वो देवता नहीं है, वो असुरों में और ये यक्ष है असल में, असुरों में तो भगवान बाद में बताएंगे प्रहलाद, तो यक्षों में मैं कौन हूँ, कुबेर हूँ। और आगे भगवान कहते हैं वसुना पावकश्चास्मि, वसु एक अलग कैटेगरी है, और वो टोटल 8 वसु होते हैं, जैसे मनुष्यों की 4 लाख किस्म होते हैं ना, लेकिन वसु टोटल 8 ही होते हैं, और 8 वसु जिनमें से भगवान कहते हैं मैं पावक यानी अग्नि हूँ। वसुओं में एक वसु को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिनका नाम है पितामह भीष्म, वो भी वसुओं में ही शुमार होते हैं, 12 जैसे 8 वसु हैं उनमें से एक भीष्म पितामह है। वास्तव में इन सारे वसुओं को श्राप मिला था पृथ्वी में आने का, जब एक बार उन्होंने मिलकर महर्षि वशिष्ठ की एक गऊ नंदिनी को चुराने का प्रयास किया था, क्योंकि नंदिनी बहुत ही यूनिक गऊ थी, वो एक अद्भुत उनके उसके पास अद्भुत पावर था। तो इसको देखकर इन सारे वसुओं ने सोचा कि हम इतनी महान अद्भुत गऊ है, उसको हम अपने आश्रम में लेके जाते हैं। तो यहाँ से वशिष्ठ मुनि से उनको चुराने का प्रयास किया, परंतु क्योंकि नंदिनी जो थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी एक वसु ने उसको खींचा, पकड़ के वो लेकर जाने का प्रयास कर रहा था, और वहीं पर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें देख लिया और वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि आप जाके भौतिक जगत में जन्म लो। जन्म क्योंकि वसु वैसे जन्म नहीं होता है उनका, लेकिन उनको भौतिक जगत में उनको जन्म लेने का अपराध मिला, वो क्योंकि अपने कार्य कर रहे होते। तो फिर है ना, इन्होंने सोच साथ में उन्होंने क्षमा याचना की कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हम लोग ने हमसे गलती हो गई, हम भौतिक जगत में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे उनको प्रार्थना की। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें कहा ठीक है, आप लोग बाकी सब तो माँ गंगा की कृपा से अपने श्राप से जल्दी छूट जाओगे, भले आप लोगों को रहना नहीं पड़ेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को श्राप दिया है, आपको भौतिक जगत में जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन माँ गंगा में यदि आपको डुबो दिया जाएगा फौरन से, तो फिर आप लोगों को वहां पर रहकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा इस मृत्युलोक में। देखो भक्तों, ये मृत्युलोक कैसा है कि यहाँ पर आकर वसु लोग चाहते हम लोग जल्दी श्राप भी मिल गया, यहाँ पर आना एक श्राप है। जैसे कुबेर, अभी कुबेर को हम कुबेर के विषय में पढ़ रहे थे, उनके ही दो पुत्र थे नलग्रीव और मणिग्रीव और नल कुबेर, हाँ, जिनको भगवान ने यहाँ उनको भी श्राप दिया था नारद मुनि ने इस भौतिक जगत में जन्म लेने का, वृक्ष बनने का, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भगवान के भक्त के द्वारा उनको श्राप मिला था, जिसके कारण उनको भगवान के दर्शन हुए थे। और यहाँ पर वसुओं को भी महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था और कहा कि चलो ठीक है, बाकी जो आप साथ हो वो तो छूट जाओगे माँ गंगा की कृपा से, परंतु वो वसु जिसने गऊ को पकड़ के खींचा है, हाथ से स्पर्श किया है, वो नहीं छूटेगा, उसे भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। तो फिर इस श्राप के कारण सारे वसुओं को भौतिक जगत में जन्म लेना था, लेकिन भौतिक जगत की ऐसी माया है कि माता कुछ भी हो जाए अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती, चाहे वो कितनी क्रूर माता क्यों ना हो, अपने पुत्र की हत्या नहीं कर सकती, वो उसे नहीं मार सकती। तो फिर उन सारे वसुओं ने जाकर माँ गंगा से प्रार्थना की कि आप ही हमारी सुरक्षा कीजिए। माँ गंगा ने जब उनको देखा तो उन्होंने करुणा करके उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी माता बनूंगी और तुम्हें उत्पन्न करते ही अपने जल में बहा दूंगी। तो माँ गंगा भौतिक जगत में रहने वाले महाराजा शांतनु की पत्नी बनना स्वीकार करती हैं, इस शर्त पर कि विवाह के बाद वो कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी कार्य करेगी तो वो प्रश्न नहीं करेंगे। तो महाराजा शांतनु क्योंकि गंगा की सुंदरता पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए थे, तो उन्होंने उनकी इस बात को स्वीकार किया कि चलो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं कभी भी तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा। तो जब उनका पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, वो उसको गंगा में जाके बहा के आ गई। महाराजा शांतनु ने जब देखा बहुत ज्यादा दुखी हुआ, वो सोचे कैसे कोई माँ कैसे कर सकती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया था कि मैं पूछूंगा नहीं, तो वो चुप रह गए। और इसे करते 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 सात पुत्र महाराजा शांतनु के माँ गंगा ने गंगा में बहा दिए, जो ये सात वसु थे जिनको श्राप मिला था इस भौतिक जगत में आने के लिए। तो उनको जब महाराजा शांतनु उनको डूबता हुआ देख रहे थे कि किस तरह से माता उनको पैदा होते ही डुबो देती है गंगा में, तो बहुत ज्यादा दुखी होते थे, बहुत रोना आता था, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने गंगा को यह वचन दिया था कि मैं तुमसे पूछूंगा नहीं। और गंगा ने कहा था अगर तुमने मुझसे कभी कोई क्वेश्चन किया, कोई प्रश्न किया, तो फिर मैं तुम्हें उसी समय छोड़ के चली जाऊंगी। तो लेकिन फिर भी जब आठवां पुत्र, आठवां वसु अर्थात भीष्म पितामह का जब जन्म हुआ, तब महाराजा शांतनु से रहा ना गया और उसने कहा तुम कैसी माँ हो, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है, जो भी संतान मेरी उत्पन्न होती है तुम उसे पैदा होते ही गंगा में डिबो देती हो, तुम माँ हो या क्या डायन हो। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो फिर है ना माँ गंगा ने बोला कि ठीक है महाराज, आज आपने अपना वचन तोड़ा है तो आज मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, जीवन में कभी भी मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगी। अब लेकिन फिर भी यह मुझे पता है कि इसका अभी तक श्राप नहीं खत्म हुआ है, इसे अभी तक इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट भुगतने पड़ेंगे, तो इसको मैं इस योग्य बना के भेजूंगी इस संतान को कि वो आपके इस राज्य को संभाल सके, अपने जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। तो हमने देखा भीष्म पितामह के विषय में, भीष्म हमने महाभारत में और भगवद गीता में भी बहुत कुछ पढ़ा, जिसे हमें पता चलता है कि उनकी जीवन उनका जीवन एक कठोर तपस्या है। बहुत ही जब हम ब्राह्मण का अपराध करते हैं, गऊ का अपराध करते हैं, तो कितना हमें केवल गऊ को पकड़ के खींचने से उनको इतना अपराध मिला है, तो हम देख सकते हैं कि कितना ये महान भयंकर अपराध है। तो भगवान कहते हैं वसु नाम तावकशान रास में, कि वसुओं में आठ वसुओं में एक अग्नि भी है। अब अग्नि को हम देवता भी कहते हैं, परंतु ये जो देवता यक्ष और ये रुद्र हैं, वो देवता 33 करोड़ देवी देवता से अलग हैं। मतलब ये वसु में शुमार होते हैं, कुछ इस तरह कैटेगरीज अलग अलग हैं। तो वसु नाम पावकाशास्मी, अग्नि इस संसार की सबसे पवित्र वसु है और ये साक्षी भी है। हमारा साक्षी है, हम जो खाते हैं वो इस अग्नि के द्वारा पकता है और जो भगवान को खिलाते हैं वो भी इस अग्नि के द्वारा ही भगवान तक पहुंचता है। मतलब जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि को जो है वो भगवान का मुख भी कहा जाता है, जिसके द्वारा भगवान भोजन करते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र अग्नि है, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं वसु नाम पावकश्चास्मी मेरु शिखरिणाम। मेरु का मतलब होता है सुमेरु भी कहते हैं इसको, और ये बहुत ही विशाल पर्वत है। विशाल पर्वत पता है किसका है? वो मिट्टी का पर्वत नहीं है, बल्कि सोने का पर्वत है। बहुत ही विशाल सोने का पर्वत है और ये इतना विशाल है कि इसको क्रॉस करना संभव नहीं है। बहुत ही विशाल है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। बहुत ऊंचा भी है और बहुत फैला हुआ है। इसलिए हमारी जो जपा माला है उसमें भी एक बड़ा मोती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुमेरु। मतलब उसके अंदर विशालता है, बहुत विशाल है। उसको हम कभी भी क्रॉस नहीं करते ना, जब भी वो मोती आता है तो हम टर्न करके दूसरी साइड से चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो सुमेरु पर्वत है वो सारे शिखरिणा यानी जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे ज्यादा महान है, तो वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये सारी वस्तुओं को इस भौतिक जगत में, अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में आ रहा है कि सुमेरु पर्वतों में भगवान ने सुमेरु कहा, जबकि हम जानते हैं कि भगवान पर्वतों में गोवर्धन है। वास्तव में ये जो वस्तुएं जो भगवान बता रहे हैं वो इस भौतिक जगत की बता रहे हैं, गोवर्धन आध्यात्मिक जगत का पर्वत है। इसलिए उनके विषय में वो तो आध्यात्मिक जगत का तो कण कण, वृंदावन में तो सब कुछ भगवान का ही अंश है, लेकिन यहाँ पर इस भौतिक जगत में किस तरह से जीव जो है वो भगवान को याद कर सकते। जैसे एक पर्वत को देखेंगे तो कहें कितना विशाल है ये पर्वत, और उन विशाल पर्वतों में सबसे विशाल पर्वत वो सुमेरु, और सुमेरु में भी वो कैसा पर्वत जो सोने का है, तो कितना उसके अंदर ग्रेटनेस है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हर एक वस्तु जो बहुत ज्यादा ग्रेट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है, वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रही है, वो मैं हूँ। यानी कि उसको देखकर आपको मुझे स्मरण करना चाहिए, मुझे याद करना चाहिए कि कृष्ण कितने, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो कृष्ण भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने महान होंगे। हमें यहाँ पर कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, ये सारी भगवान की विभूतियां हैं। दीज आर नॉट डायरेक्टली द पर्सन कृष्णा, ये डायरेक्टली कृष्ण नहीं है, बट द रिप्रेजेंट्स द एपुलेंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ कृष्ण इन दिस वर्ल्ड, इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में भगवान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, भगवान की विभूतियों को, भगवान के विस्तार को हमें बता रही हैं। तो भक्त जो होता है ना वो केवल भगवान में रुचि रखता है, उसको कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की लीला ही सबसे ज्यादा मधुर लगती है, परंतु जो भक्त नहीं होते हैं उनको भगवान की महानता, ये जो विभूतियां उनमें आकर्षण होता है। लेकिन इसलिए भगवान उनके लिए भी यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण का कृष्ण ही में सब कुछ देखते हैं, उनको कुछ और देखकर कृष्ण को याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही कृष्ण को याद करते हैं। तो भौतिक लोग जो कि भगवान के भक्त नहीं है वो किस तरह से भगवान को स्मरण कर सकते हैं एक एक वस्तु को देखकर, तो इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये भक्तों के लिए कैसे लाभदायक है, क्योंकि भक्त जो है उनका आनंद किस में है, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको उनका सब कुछ कृष्ण ही है, लेकिन वो कृष्ण के विषय में श्रवण करके कि ये कृष्ण, अच्छा ये कृष्ण की महानता, वो जितना जितना भगवान की महानता के विषय में, भगवान की विभूतियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा होता है कि कृष्ण कितने महान है, कृष्ण देखो मेरा कृष्ण, और उसके विषय में देखो कितना अच्छा अच्छा बताया जा रहा है। तो वो कृष्ण के विषय में श्रवण करके उसको आनंद आ रहा होता है। तुष्यंति चरमंति च, तो कृष्ण की लीला है, कृष्ण की बात है, कृष्ण के शब्द हैं, कृष्ण के विषय में कुछ भी बताया जाता है तो भक्त बहुत आनंदित होते हैं। तो हम सब अभी और भी बहुत कुछ भगवान अपने विषय में बताएंगे और हम सब उससे आनंदित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।